नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, इसीलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। कल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था कई अनिश्चितताओं और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और सभी देश अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का भी ये दायित्व है कि वे स्वदेशी का संकल्प लें।
जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा।
श्री मोदी ने व्यापारियों और दुकानदारों से भी केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें और हथियार देश के दुश्मनों का सफाया कर देंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और BLO पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। BLO का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रूपये कर दिया गया है। BLO की प्रोत्साहन राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रूपये कर दी गई है। उधर BLO पर्यवेक्षकों को अब सालाना 12,000 रूपये की जगह 18,000 रूपये मिलेंगे। अब पहली बार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को भी मानदेय मिलेगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 30,000 और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 25,000 रूपये दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार में गहन पुनरीक्षण कार्य से जुड़े BLO के लिए 6,000 रूपये की विशेष प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। कल आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में एक समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि बेहतर सड़क सुविधा के कारण आवाजाही की लागत 16% से घटकर 10% हो गई है और इससे निर्यात दोगुने होने तथा रोजगार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। श्री गडकरी ने बताया कि विजयवाड़ा हैदराबाद सड़क को 6 लेन का बनाया जाएगा और हैदराबाद तथा विजयवाड़ा के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए देश भर में कई केंद्रों पर NEET PG परीक्षा शुरू हो गई है। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी सवेरे 9 बजे से दोपहर 5:30 बजे तक एक ही पाली में परीक्षा दे रहे हैं। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित है। दिल्ली पुलिस ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए 16 अगस्त तक के लिए दिल्ली में पारंपरिक उपकरणों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक असामाजिक तत्व और आतंकी पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, गर्म हवा के गुब्बारे जैसे उपकरणों का दुरुपयोग कर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया है। अपने हवाई क्षेत्र पर ईरान ने ये प्रतिबंध इस वर्ष जून में इजराइल के साथ 12 दिन के संघर्ष के दौरान लगाए थे। ईरान के नागर विमानन संगठन के अनुसार तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही फिर सामान्य हो गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, झारखंड, रायलसीमा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने का अनुमान है। खेलों में आज लंदन में भारत के साथ 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 4थे दिन इंग्लैंड दूसरी पारी में 1 विकेट पर 50 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल मैच के 3रे दिन भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाकर 23 रन की बढ़त हासिल की। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान इंग्लैंड 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।